बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 23 फरवरी दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। क्या पुलवामा हमले के बाद क्रिकेट विश्व कप में भारत को पाकिस्तान का बहिष्कार करना चाहिए या खेल को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए? बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा होगी आज इसी विषय पर। क्या है आपकी राय? कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार नॉरिस प्रीतम, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। भारत प्रशासित कश्मीर में कई प्रमुख अलगाववादी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। बीते सप्ताह पुलवामा में हुए एक आत्मघाती धमाके में 40 से अधिक सुरक्षा बलों के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में तनाव है। हजारों अतिरिक्त सुरक्षा बल भी घाटी में तैनात किए गए हैं। चरमपंथी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता यासीन मलिक भी गिरफ्तार नेताओं में शामिल हैं। इस्लामी समूह जमाते इस्लामी से जुड़े दर्जनों नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इन गिरफ्तारियों की आलोचना करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति को कैद किया जा सकता है, उसके विचारों को नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी छात्रों पर हुए हमलों की निंदा की है और कहा है कि हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीरियों से नहीं। नरेंद्र मोदी ने कहा,
भाइयों बहनों, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। पिछले दिनों कहां क्या हुआ, घटना छोटी थी कि बड़ी थी, कश्मीरी बच्चों के साथ हिंदुस्तान के किसी कोने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुद्दा ये नहीं है। इस देश में ऐसा होना नहीं चाहिए।
ये थे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 99 हो गई है। 100 से ज्यादा लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मरने वालों में कई महिलाएं भी हैं। ये सभी लोग चाय बागानों में काम करते थे। लगभग 2 सप्ताह पहले ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करीब 100 लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मारे गए थे। इस संबंध में और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता दिलीप शर्मा।
ये घटना मैं बता दूं आपको कि बृहस्पतिवार शाम की है और जहां ये जो टी गार्डन है हालीमारा और ओखा, ये दो टी गार्डन गोलाघाट जिले के अंतर्गत आते हैं और यहां पर ही ये अक्सर शाम को मजदूर जब थके हारे आते हैं तो ये जो देसी शराब है खुद वहां बनाई जाती है उनके द्वारा, ये लोग थकावट डालने के लिए पीते हैं। और अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं एक्चुअली उसमें कौन सा मटेरियल था जो इतनी तादाद में ये लोगों की मौत हुई है, उस मटेरियल का अभी पता नहीं लगा पाया है।
ये थे स्थानीय पत्रकार दिलीप शर्मा। नाइजीरिया में नया राष्ट्रपति और संसद सदस्य चुनने के लिए मतदान हो रहा है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहां 7 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डाल रहे हैं। ये अफ्रीकी इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव है। बीते सप्ताह प्रबंधन कारणों की वजह से मतदान को 7 दिनों के लिए टाल दिया गया था। चुनाव आयोग का कहना है कि अब सभी दिक्कतों को दूर कर दिया गया है। मुख्य मुकाबला वर्तमान राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी और पूर्व उपराष्ट्रपति अतीकू अबू बकर के बीच है। वहीं देश के पूर्वोत्तर हिस्से में मतदान शुरू होने के बाद एक धमाका होने की भी खबर है। यहां चरमपंथी संगठन बोको हराम सक्रिय है। चुनाव के नतीजे अगले सप्ताह तक आ सकते हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कोलंबिया के अधिकारियों के मुताबिक वेनेजुएला की सेना के कम से कम 3 सदस्यों ने सीमा पार कर कोलंबिया में शरण ली है। वेनेजुएला में विपक्षी कार्यकर्ता मानवीय मदद को देश में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। विपक्षी नेता खुआन गोइदो ने सेना से राहत सामग्री को देश में आने देने की अपील की है। वहीं राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का कहना है कि अमरीका राहत भेजने के बहाने वेनेजुएला पर आक्रमण करना चाहता है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, नोट कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स 1811 7000 और 1811 7001। इंडिया बोल में चर्चा को आरंभ करने से पहले आज की एक बड़ी खबर। भारत प्रशासित कश्मीर में अलगाववादी समूहों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करके सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच भारत सरकार ने बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी की लगभग 100 कंपनियों को घाटी में तैनात किया है। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद घाटी में युद्ध और आर्टिकल 35A को हटाए जाने की अफवाहें फैल गईं, लेकिन पुलिस का दावा है कि यह सब चुनावी तैयारियों का हिस्सा है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट सुने।
जमात इस्लामी के अध्यक्ष हमीद फयाज और हुर्रियत नेता यासीन मलिक समेत सैकड़ों अलगाववादी नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को कल रात घाटी के विभिन्न क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया। पुलवामा हमले के बाद अलगाववादियों पर होने वाला ये सबसे बड़ा क्रैकडाउन है। अलगाववादियों ने इन गिरफ्तारियों के विरुद्ध कल घाटी में बंद का आह्वान किया है। इस बीच भारत सरकार ने अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी की अधिकतम 100 कंपनियों को घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया है। गिरफ्तारियों और फोर्सेस की तैनाती के बाद घाटी में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कहीं ये अफवाह उड़ी कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला कर रही है और कहीं ये बताया गया कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट धारा 35A को खारिज कर देगी, परंतु पुलिस ने बताया कि अलगाववादियों के विरुद्ध क्रैकडाउन और गिरफ्तारियां चुनावी तैयारियों का हिस्सा हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और बीजेपी के पूर्व समर्थक सजाद लोन ने इन गिरफ्तारियों की निंदा की है और कहा है कि इससे स्थिति और बिगड़ जाएगी। गौरतलब है पुलवामा में 14 फरवरी को भारतीय फोर्सेस पर हुए जानलेवा हमले के बाद भारत भर में कश्मीर विरोधी लहर फैल गई और कई इलाकों में कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों को उत्तेजित भीड़ ने परेशान किया, जिसके बाद सैकड़ों कश्मीरी वापस घाटी लौटे हैं। कश्मीर में भारत का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों और अलगाववादियों ने इस स्थिति पर सख्त प्रक्रिया जाहिर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 राज्यों की सरकारों से कहा है कि वो कश्मीरियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने आज लाल चौक में विरोध प्रदर्शन करके इन घटनाओं की निंदा की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अली मोहम्मद सागर।
देखिए, अगर हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमारा जो हक है, हमारे जमहूरी हुकूक है, जिस तरह उनको ढाका जा रहा है, उनको पामाल किया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही है, किस गुनाह पे, क्या गुनाह क्या है? ये हमले पहले भी हुए, हमने कंडम किया, हमारी क़यादत ने, तमाम कश्मीरियों ने, हुर्रियत ने भी कंडम किया। जब मैंने उनका स्टेटमेंट सुना कि हम कहते हैं जो खून बहेगा ज़मीन पर उसकी हम अजमत करते हैं, तो आज कश्मीरियों को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है?
जवाहर इस्लामी और लिबरेशन फ्रंट के विरुद्ध सरकार के क्रैकडाउन पर भी राजनीतिक वर्गों में जबरदस्त नाराजगी पाई जा रही है। पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद।
जिस तरीके से जमात इस्लामी की सारी कयादत को गिरफ्तार किया गया, वो शायद कोई अच्छी बात नहीं, और खुद हिंदुस्तान के अपने मफादात के लिए भी हरगिज ये नहीं है कि वो कश्मीरियों के साथ ऐलान जंग करे। और वो कश्मीरी जो बिल्कुल नहते हैं, जो हर वक्त चारों तरफ से तशद्दुद का शिकार है।
गौरतलब है भारत सरकार पुलवामा में हुए हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के लिए जबरदस्त दबाव में है। उत्तर प्रदेश के दारुलूम देवबंद में कुलगाम और पुलवामा के दो छात्रों शाहनवाज अहमद और आकिब अहमद को गिरफ्तार किया गया है और दावा किया गया कि इनका संबंध चरमपंथी गुट जैश मोहम्मद के साथ है, परंतु इनके परिवार वालों ने कहा कि इन्हें फर्जी केस में फंसाया जा रहा है।
दीनी तालीम में अपनी डिग्री पाने के लिए वो देवबंद चला गया, उसका तो किसी तंजीम से कोई वाबस्तगी नहीं रही है, नहीं यहाँ के पुलिस रिकॉर्ड में है, न ही गाँव के। मौत माना गुजारिश करते हैं कि इसकी रहाई फिलफोर इज्जत से की जाएगी।
ये बेचारा देवबंद दारुलूम देवबंद पढ़ने के लिए गया और न जाने उधर क्या हुआ, इसलिए हम अपनी हुकूमत से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि हमारे इस लड़के को जल्द से जल्द रिहा करें।
पुलवामा हमले के बाद जिस अंदाज से भारतीय मीडिया में जवाबी कार्रवाई की बातें हो रही हैं, कश्मीर के राजनीतिक और सामाजिक वर्गों में एक सीमित युद्ध या संविधान में कश्मीर से जुड़ी धाराओं के फेरबदल का डर फैल गया है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
लौटते हैं इंडिया बोल पर। जैसा कि श्रोता जानते हैं, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को भारतीय सुरक्षा बलों पर जैश मोहम्मद के आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज़्यादा जवान मारे गए हैं। जैश मोहम्मद एक चरमपंथी संगठन है जिसका मुख्यालय पाकिस्तान के बहावलपुर में है। अजहर मसूद इस गुट के मुखिया हैं। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान अजहर मसूद और जैश मोहम्मद को शह देता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान भारत के इस आरोप से साफ इनकार करता है। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात, 4 महीने के बाद 16 जून को मैनचेस्टर में क्रिकेट विश्व कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला निर्धारित है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय खेल प्रेमियों का एक हिस्सा ये मांग कर रहा है कि भारत को क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान का बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार करना चाहिए या खेल को खेल की तरह खेला जाना चाहिए? बीबीसी इंडिया बोल में इस मुद्दे पर श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करने से पहले स्टूडियो में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार नोरिस प्रीतम, आप बताएं हमारे सुनने वालों को, सरकार के मोर्चे पर, बीसीसीआई के मोर्चे पर बात कहां तक पहुंची है इस मामले में?
देखिए, सबसे पहली बात तो यह है संदीप जी कि राजनीति को खेलों से हटा नहीं सकते। जब तक खेल है जब तक राजनीति रहेगी, जब तक राजनीति है खेल रहेंगे। दूसरी बात, अगर हम भारत के बात को ध्यान में रख के करें तो हम बात जिसकी कर रहे हैं वो है खेल है क्रिकेट, जो हमारे हर रोम रोम में बसा हुआ है, तो उसमें राजनीति भी है। और तीसरी बात जो सबसे अहम है क्रिकेट और सोने पे सुहागा, वो है इंडिया और पाकिस्तान। तो इसलिए हम ये कहें कि अलग हट जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। जहाँ तक यह है कि खेलों को खेल की भावना से लेना चाहिए, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल उसमें वजन है, रहना चाहिए। और सरकार की भी अपनी अलग मजबूरी है, तो लेकिन लोगों को समझना चाहिए, क्रिकेट के फैन को समझना चाहिए कि बहिष्कार करने से आज तक कभी किसी का फायदा नहीं हुआ, खिलाड़ियों का नुकसान हुआ है, खेल का नुकसान हुआ और समाज का नुकसान हुआ है।
और नोरिस साहब, जो मैं सवाल कर रहा था कि बहिष्कार होगा नहीं होगा, इस मामले में सरकार के मोर्चे पर, बीसीसीआई के मोर्चे पर ये बात कहाँ तक पहुँची है, फैसला कहाँ पहुँचा है अभी, या अभी कुछ और सामने आना बाकी है?
देखिए, अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि साहब बीसीसीआई ने बोल दिया है चिट्ठी में कि पाकिस्तान का बहिष्कार करो, आईसीसी से बोल रहे हैं। मुझे लगता है वो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम पाकिस्तान को आईसीसी से ये नहीं कह सकते कि मत खेलिए। हाँ, अगर भारत चाहे तो भारत ना खेले, वो कर सकता है, वो हमारे हाथ में है, दूसरे मुल्क हमारी बात क्यों सुनेंगे? तो मुझे लगता है कि अभी 26 फरवरी का इंतज़ार करना चाहिए, तो शायद थोड़ी सी डेवलपमेंट हो, क्योंकि उस दिन आईसीसी की मीटिंग है, उसमें जाहिर बात है ये मुद्दा उठेगा और तब पता चलेगा कि हमारी चिट्ठी जो चली है या नहीं चली है, पहुंची है कि नहीं आईसीसी में, और उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो मैं 26 तारीख तक कुछ बात मेरा ख्याल है खुल के सामने आएगी।
वरिष्ठ खेल पत्रकार नोरिस प्रीतम के साथ चर्चा हमारी रहेगी जारी। फिलहाल कार्यक्रम में श्रोताओं को शामिल करते हैं। बीबीसी इंडिया बोल में स्वागत है आज पहले श्रोता का, अपना नाम बताइए।
जी सर नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु सेन और मैं कोटपुतली से बिलोंग करता हूँ।
हिमांशु, ये कोटपुतली राजस्थान में है?
हाँ सर, राजस्थान में।
जी बताइए, क्या सोचते हैं इस बारे में आप, भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का बहिष्कार करना चाहिए या खेल को खेल की तरह लिया जाना चाहिए?
संदीप जी, सबसे पहले तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं हर रोज बीबीसी की पोस्ट देखा करता हूँ, और आज जब मैंने पोस्ट देखी और मैं जब कमेंट में गया तो बीबीसी के लिए लोगों ने कह रखा देश विरोधी, फलाना ये वो। मैं कहना चाहता हूँ क्रिकेट एक खेल है, उसको खेल के नजरिए से देखा जाना चाहिए, और हमें खेलों, कला, संस्कृति, इन सबको राजनीति से अलग रखना चाहिए। ये विषय हमारे खेल और कला दो देशों को आपस में जोड़ते हैं और ये एकता का संदेश देते हैं। हमें चाहिए कि हम क्रिकेट को बढ़ावा दें, हम खेलों को बढ़ावा दें, और हम ये नहीं कह सकते कि हम वर्ल्ड कप में नहीं खेल सकते। इसको अगर लॉजिकली देखा जाए तो इस बार वर्ल्ड कप के अंदर एक दूसरी प्रणाली का बनाया गया सिस्टम, जिसके अंदर खेलने वाले सभी 10 देशों को उनके विरोध में जो खेल रहे हैं 9 देश, उन सभी के साथ उनको मुकाबला करना है। और आप किसी एक देश के प्रति आप ये कहें कि हम इसके साथ नहीं खेलना चाहते, सरासर गलत होगा, और मैं दिल से चाहता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो।
बहुत शुक्रिया हमारे श्रोता कोटपुतली राजस्थान से। हिमांशु के बाद अगले श्रोता कौन है हमारे साथ? हेलो जी, कौन साहब हमारे साथ है?
नमस्कार
जी, नमस्ते।
हेलो सर, नमस्कार,
अपना परिचय दीजिए।
जी संदीप जी, मैं पठान खान गज्जू बोल रहा हूँ, कितनौरिया बाड़।
गज्जू साहब बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
मेरी राय ये है कि क्रिकेट खेलना चाहिए और पाकिस्तान को हराना चाहिए तो भारत का बदला होगा, और अच्छी तरह से क्रिकेट खेलें और क्रिकेट को क्रिकेट की भावना से रहना चाहिए, क्योंकि श्रोता हम सुनते हैं और क्रिकेट पाकिस्तान और भारत का मैच बहुत अच्छा होता है।
ये महज संयोग है कि हमारे दो श्रोता दोनों राजस्थान से, हिमांशु और उसके बाद गुज्जू साहब, और दोनों की बात वही कि खेल को खेल की तरह लिया जाना चाहिए। वैसे मैं श्रोताओं को याद दिलाना चाहूँगा कि 20 साल पहले साल 1999 में इंग्लैंड में ही क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान मैदान में आमने सामने थे। उस समय दोनों देशों की सेनाएं करगिल युद्ध में सीमा पर एक दूसरे पर गोले बरसा रही थी, लेकिन मुकाबला खेल बदस्तूर जारी था।
जी हाँ, देखिए युद्ध अपनी जगह है, खेल अपनी जगह है, और खाली क्रिकेट में, अगर क्रिकेट से हटकर बाहर की बात भी करें तो इवन ओलंपिक गेम्स में भी एक दिन के लिए रुक जाता है या कुछ हो जाता है और फिर खेल चलते रहते हैं। तो इसलिए खाली इसलिए, और ये युद्ध नहीं है, ये मान के चलिए ये युद्ध नहीं है, ये दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये अभी हमें पता ही नहीं है। कुछ लोगों ने हमारे फौजियों को मारा है जिस पे हम सबको सहानुभूति है, हम सब उनके साथ हैं, लेकिन उसके आधार पर सिर्फ खेलना होना या जैसे हिमांशु जी बोल रहे थे कला और संस्कृति को भी रोक दिया जाए, वो मुझे लगता है उचित नहीं है।
अगले श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। शीशे के उस पार बैठकर रविशंकर प्रसाद कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे हैं, हमें अगले श्रोता से जोड़िए। जी कौन साहब बोल रहे हैं?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मैं इतना सुन पा रहा हूँ कि आप जलगांव से बोल रहे हैं या कर्नाटक से बोल रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपकी आवाज साफ नहीं पहुँच रही है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप दोबारा कोशिश कीजिए ताकि साफ साफ आवाज आपकी हम तक पहुँच सके। इस बीच अगले श्रोता हमारे साथ हैं। जी
हेलो।
जी कौन साहब बोल रहे हैं?
मैं प्रमोद कुमार केसरी।
प्रमोद जी बहुत स्वागत है, कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं क्वाथ बिहार से बोल रहा हूँ।
जी आप ये बताइए प्रमोद जी कि भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पुलवामा घटना के बाद तमाम पृष्ठभूमि आप जानते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में?
सर मैच तो एकदम होना चाहिए, हमारे देश के जो नेता लोग हैं वो और बस आपस में मतभेद फैलाकर चाहते हैं कि मैच ना हो। बताइए कि इस खेल से और राजनीति से क्या संबंध है? हम लोग खेल प्रेमी हैं, हम लोग तो खेल को सुनना है और देखना है, लेकिन इसमें राजनीति करना बेकार है। खिलाड़ी और क्रिकेट प्रेमी इसको नहीं मानेंगे। मैं चाहता हूं कि ये मैच हमेशा होए, ठीक है यहां पर ना होए, दूसरे देश में होए, जैसे अरब में होता है वहां पर मैच होए।
बहुत शुक्रिया प्रमोद कुमार, बिहार से हमारे श्रोता थे। नौरिश जी आपके पास आ रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि क्रिकेट विश्व कप में भारत ने हमेशा पाकिस्तान को हराया है, एक बार फिर उन्हें हराने का समय आ गया है। पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलकर भारत पाकिस्तान की ही मदद करेगा, इस सब के बावजूद देश पहले है, देश जो तय करेगा वही मुझे मंजूर होगा। क्या आपको लगता है कि दो अंक अपने हाथ से छोड़ देना किसी भी टीम के लिए, खासतौर पर क्रिकेट विश्व कप जैसे मुकाबले में व्यावहारिक होगा?
नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दो अंक हमें नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन जैसा कि सचिन ने भी बोला है कि दो अंक तो नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन जैसा देश कहेगा, जैसा सरकार कहेगी। अब सवाल यह है कि सरकार क्या कह रही है? सरकार तो राजनीतिक तौर पर सोचेगी, सरकार ये नहीं सोचेगी कि दो अंक जा रहे हैं। सरकार को अपना भी बचाव करना है, चुनाव भी हैं, ये सब सारी बातें हैं। तो क्रिकेट जो है इस समय जो हम बात कर रहे हैं वो खाली, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि राजनीति से हटा नहीं सकते इसे आप, वही है बिल्कुल, आप राजनीति से नहीं हटा रहे हैं। अगर कोई और मौका होता तो सरकार अब तक कह देती कि इधर या उधर आर या पार खेलो या मत खेलो, लेकिन वो घुमा फिरा के आपको नहीं, बोर्ड डिसाइड करेगा। बोर्ड कैसे डिसाइड करेगा ये मत भूलिए, लोगों को शायद पता नहीं है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल में भारत के किसी खिलाड़ी को भाग लेने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। सरकार की इजाज़त के बिना, चाहे मैं पासपोर्ट होल्डर हूँ या ना हूँ, मैं बाहर खेलने नहीं जा सकता क्योंकि मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर हमें पाकिस्तान से खेलना है, पाकिस्तान के हमें चीन जापान किसी से भी खेलना है, तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सरकार को हमें बताना पड़ेगा कि हम खेलें या ना खेलें।
बिल्कुल सही। अगले श्रोता के पास जाने से पहले एक तथ्य मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूं। जैसा कि आप जानते हैं, श्रोता सभी जानते हैं कि जब जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, क्रिकेट पर इसका असर पड़ता है। दोनों देशों ने साल 2008 के मुंबई हमलों के बाद से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है। नौरिश साहब मेरा तथ्य बिल्कुल सही है?
ठीक है बिल्कुल।
तो अगले श्रोता के पास चलें।
जी बिल्कुल।
जी रविशंकर कुमार, अगले श्रोता से हमें जोड़ा जाए। जी कौन कौन है हमारे साथ इस समय?
हेलो।
जी कौन साहब बोल रहे हैं?
मैं सर दिलावर हुसैन कादरी, मेरा बात जैसलमेर राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ।
कादरी साहब बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
जी मैं ये कहना चाहता हूँ, हवस ने कर दिया नुए इंसान को टुकड़े टुकड़े। अखवत का बयान हो जा, मोहब्बत की जुबा बन जा। पर अब क्रिकेट का बहिष्कार करे या किसी खेल का बहिष्कार करे, इससे न तो हिंदुस्तान का भला होने वाला, न कोई पाकिस्तान का भला होने वाला। अगर हमें पाकिस्तान का बायकॉट करना है तो हर चीज का हमें बायकॉट करना चाहिए, हर क्षेत्र पे बायकॉट करना चाहिए। हम क्रिकेट के मैदान पे इनका बायकॉट करें, राजनीति में दूसरी जगह हमारे नेता एक दूसरे में आपस में गले मिले, तो सर ये बात तो अच्छी नहीं है। न तो किसी देश के लिए अच्छी है, न हमारे समाज के लिए अच्छी है। इससे क्या फायदा होगा हमारे देश को, क्या नुकसान होगा पाकिस्तान को?
कादरी साहब राजस्थान से हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, अगले श्रोता से भी बात कर लेते हैं। अगले श्रोता कौन है हमारे साथ?
हेलो जी, जम्मू कश्मीर से सर मोहम्मद शमी बोल रहा हूँ।
शमी साहब बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात।
सर बात ये है कि ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, एक तरफ पूरी जम्मू कश्मीर जल रही है, फौज मारे जा रही है, बॉर्डर पर तूफान बरपा हो रहा है, दर पदर हो रही है, दूसरी तरफ इनको क्रिकेट की पड़ी हुई है। क्रिकेट की खेले, क्रिकेट खेलो या बायकॉट करो, या इसका जवाब दो, या पब्लिक को बचाओ या फौज को बचाओ, कोई ना कोई हाल तो करना चाहिए। वैसे ही दिल्ली में बैठकर नारे लगाते हैं कि ये करो वो करो, हमें बचाओ, पब्लिक को बचाओ, फौज को बचाओ, हमारी सहायता करो, जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाओ और फौज को बचाओ, एक लाइन पकड़ो, या क्रिकेट ही खेलते रहो या सफारती तलखात ही करते रहो, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए सर।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद शमी साहब, जम्मू से हमारे श्रोता। एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी कौन है हमारे साथ इस समय?
विकास कुमार।
विकास कुमार कहाँ से बोल रहे हैं?
कैमूर जिला से बोल रहा हूँ, मैं आपका पसंदीदा श्रोता हूँ।
अरे वाह, आप हमारे श्रोता हैं और हम, ये बहुत अच्छा लगता है जब श्रोता हमसे इस तरह से खुलकर कहते हैं। रखिए अपनी बात, बहुत स्वागत है आपका।
हर रोज मैं आपका प्रसारण सुनता हूँ दिन भर, और सुबह का जो नमस्कार भारत आता
जी है। जी सुनते रहिए, लगातार इसी तरह सुनते रहिए और खत भी लिखिए।
मैं चाह रहा हूँ कि फौजी तो मारे ही गए, लेकिन यह मैच होना ही चाहिए, तो भारत को हराना है।
चलिए साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नौरिस साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। 50 के दशक में दक्षिण अफ्रीका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कार हुआ रंग भेद की नीतियों के कारण। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक काउंसिल ने 1964 के ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल नहीं किया। 70 के दशक में क्रिकेट के साथ भी ऐसे ही हुआ, उसका बहिष्कार किया गया टीम का। फिर 90 के दशक में जब रंग भेद का रंग उतरने लगा और नेल्सन मंडेला की रिहाई हुई, तब कहीं जाकर दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार खत्म हुआ। क्या पुलवामा घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान के मामले में भारत ऐसी कोई तस्वीर बना सकता है, बनाने में सक्षम है, जो अभी मैंने उदाहरण दिया दक्षिण अफ्रीका का?
देखिए उसमें सरकार कौन थी तब और सरकार कौन है अब, ये बड़ा एक अहम सवाल है। जिस तरह से एग्रेसिव आक्रमण संभाल के सरकार बैठी हुई है, उससे ये चीज़ें हमारे मुश्किल हो जाती हैं। ये मत भूलिए कि खाली क्रिकेट की ही बात है, बाकी देश भी आपस में लड़ते हैं। कोरिया का एग्जांपल ले लीजिए, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया आपस में पॉलिटिकली एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन एशियन गेम में इकट्ठे खेलते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उन्हें मालूम है इसका नुकसान है। हमें अब जैसे शूटिंग चल रही है, खाली क्रिकेट का सवाल नहीं है, वर्ल्ड कप शूटिंग दिल्ली में हो रहा है, बशीर और मोहम्मद खलील को हमने एंट्री पाक वीज़ा नहीं दिया है, उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ हमसे अलग हो जाएगा। उन्होंने ऑलरेडी वॉर्न कर दिया है कि हमें जो यूथ ओलंपिक गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, जो 2032 की हम बात कर रहे हैं ओलंपिक गेम्स कराने की, उसकी अगर हमें बात ही नहीं हमसे करेंगे वो, तो हमारा खेल जो है, जो क्रिकेट के अलावा जो ओलंपिक खेल है, वो कम से कम 20 या 25 साल हम लोग पीछे आ जाएंगे। सॉलिडेरिटी फंड जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मिलता है, वो एक बहुत बड़ी रकम है, उसको भी बंद हो सकती है हमारी।
नौरिस साहब आपने फंड की बात की, तो भारत पाकिस्तान और क्रिकेट के बहाने जो मार्केट और जो मार्केटिंग और जो पैसा है, जरा इस पर भी रोशनी डालिए।
देखिए क्रिकेट जो है वो खाली खेल नहीं है आज की तारीख में, उसको इंडस्ट्री या बल्कि कह लीजिए कि वो एक धंधा है या बिजनेस है, जिसकी वजह से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अगर खाली हम इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट नहीं करेंगे, तो सोचिए टीवी राइट्स का क्या होगा, मार्केटिंग का क्या होगा, हज़ारों लोगों की नौकरी उस पर निर्भर करती है। और जहाँ तक खेल का सवाल है, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान का खेल है वो भी बेचारा डूब जाएगा, उनको कोई खिलाता नहीं अपने साथ। ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान से कोई सहानुभूति है, अगर हम खेल की बात कर रहे हैं, तो एक कुल मिला के बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल लॉस या आर्थिक नुकसान भारत को और भारत के क्रिकेट को भी होगा।
कुछ टिप्पणियां मैं बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने से लेता चलूं, फिर श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। पूनम गुप्ता लिखती हैं, नो क्रिकेट विद पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होना चाहिए। मोहम्मद शाहजेब वकार लिखते हैं, अलग रखना चाहिए क्रिकेट और राजनीति को। अनिल यादव लिख रहे हैं, खेलना चाहिए वरना दुनिया कहेगी हम डर गए। शिवम सिंह लिखते हैं, खेलना चाहिए और बुरी तरह हराना भी चाहिए। नेपाल के सुनसुरी इटहरी बाजार से बाल कुमार विरही लिख रहे हैं, खेल खेल है, सियासत ही तो है, इसलिए खेल में सियासत की छाया नहीं पड़नी चाहिए, जो आप कह रहे थे। एक और टिप्पणी राजकुमार लिखते हैं, क्रिकेट मनोरंजन है, नहीं भी खेले तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जवान इस देश की शान है, ये ना हो तो फर्क पड़ता है। अगले श्रोता के पास चलते हैं। जी
हेलो,
कौन है हमारे साथ इस समय?
हेलो
जी, अपना नाम बताएं।
मैं रामकुमार वर्मा भोपाल से।
रामकुमार वर्मा भोपाल से?
रामकरण वर्मा भोपाल से।
रामकरण जी, बहुत स्वागत है। क्या सोचते हैं आप, भारत को क्रिकेट में पाकिस्तान का बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
सर बहुत खुशी हुई, मैं 84 से आपका श्रोता हूँ सर, और पहली बार मौका मिला सर। खेल बिल्कुल होना चाहिए, खेल को खेल भावना से लेना चाहिए। आज सचिन तेंदुलकर साहब का जो आया सुबह कि अगर खेल नहीं होता है और पाकिस्तान को 2 अंक मिलते, वो मैं बहुत खुशी हूँ, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। खेल को खेल भावना से लेना चाहिए, इसमें राजनीति कहीं भी नहीं आना चाहिए। मुझे तो ये लगता है सर, कहीं ना कहीं कुछ लोग अपना कुछ बात दीदी करने के लिए ऐसा करते हैं कि खिलाड़ियों के बीच में दुर्भावना पैदा हो। खेल को खेल भावना से लेना चाहिए और खेल बिल्कुल होना चाहिए सर।
रामकरण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत खुशी की बात है कि आपका पहली बार ही फ़ोन लगा, बात करने का आपको मौका मिला। आगे भी कोशिश करते रहिए और चिट्ठियां ज़रूर लिखिएगा, कैसे लगते हैं आपको हमारे कार्यक्रम। अगले श्रोता के पास चलते हैं। जी लगता है संपर्क टूट गया है, लगता है संपर्क टूट गया है। नौरिस साहब आपके पास आ रहे हैं। एक खेल पत्रकार होने के नाते और क्रिकेट का इतिहास और सब वर्तमान आप बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको लगता है कि आपकी व्यक्तिगत राय क्या है कि क्या वाकई ये कदम सही होगा बहिष्कार करना, या ये एक रास्ता है भारत पाकिस्तान के बीच में किसी तरह, जिसे खुला रखा जाना चाहिए तमाम बातों के बावजूद?
देखिए, एक खेल पत्रकार होने के नाते और खुद एक एथलीट पुराने पूर्व धावक होने के कारण मुझे तो लगता है खेल किसी भी फॉर्म में होना चाहिए, चाहे हम मोहल्ले के लेवल पे हों, हर जगह हों। लड़ाई झगड़ा करते हैं फिर हम खेलने उतर जाते हैं, तो खेल ज़रूर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम बात क्रिकेट की कर रहे हैं, अब क्रिकेट हमारे हर तरह से हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, इसलिए तकलीफ होती है। मुझे लगता है अगर हम और बाकी खेल भी खेलें पाकिस्तान के साथ, तो जो है हमारी जो टेंशन है, जो वो भावना खुल के सामने आ गई, हमें एथलेटिक्स में जाना चाहिए, हमें कबड्डी खेलनी चाहिए, जो खेल जो सारे पाकिस्तान भी खेलते हैं और हम भी खेलते हैं, जिस पर इतनी स्पॉटलाइट नहीं है। हम छोटे छोटे खेल खेलें। साइकिलिंग टीम पाकिस्तान की आई थी पिछले साल एशियन चैम्पियनशिप, किसी ने कोई उत्तेजना नहीं थी, सब आराम से खेल के गए। वो मेरे साथ कुछ खिलाड़ी उनके जामा मस्जिद शॉपिंग करने भी गए थे, घूमने गए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन क्योंकि क्रिकेट एक स्टार्स हैं, इस तरह मान लीजिए अगर बॉलीवुड स्टार कोई पाकिस्तान में चला जाए तो पीछे पीछे जनता घूमेगी, लेकिन एक आम आदमी जाता है उसे वो कुछ नहीं कहते हैं। तो मुझे लगता है बजाय क्रिकेट पे फोकस करने के, हमें बाकी सब छोटे गेम पे भी ध्यान देना चाहिए और हमें खूब आदान प्रदान होना चाहिए दोनों देशों में खेलों पे।
नौरिस प्रीतम, आपने इस चर्चा को एक और आयाम दे दिया, वक्त कम है, चलते चलते एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लें। जी
मैं डॉक्टर राम सिंह गुप्ता बोल रहा हूँ।
जी गुप्ता जी, स्वागत है।
वैसे तो नमस्कार सर, वैसे तो खेल बहुत अच्छी चीज है और खेल सद्भावना की भी मिसाल बनते हैं, किंतु जो आज की स्थितियाँ बनी गई हैं कि जिस प्रकार से तमाम महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए।
लगता है संपर्क टूट गया गुप्ता जी से। बहरहाल इस पूरी चर्चा के बीच कई लोगों का ये भी कहना होगा, सोचना भी होगा कि अभी 4 महीने का वक्त है, हो सकता है कि तब तक भारत पाकिस्तान के संबंधों में जो तनाव है वो कम हो जाए और तब आप और हम पाकिस्तान और भारत के बीच विश्व कप में क्रिकेट मैच का लुत्फ ले सकें। इंडिया बोल में वक्त हो चुका है अब कार्यक्रम को विराम देने का। नौरिस प्रीतम, शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो आए, चर्चा को सार्थक बनाया और सोचने पर मजबूर किया आपकी कई बातों ने, और शुक्रिया दुनिया भर में सुन रहे हमारे तमाम श्रोताओं का। अगले हफ्ते फिर एक ज्वलंत विषय पर चर्चा के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल संदीप सोनी और स्टूडियो मैनेजर रविशंकर कुमार के साथ दीजिए पूरी टीम को इजाजत, शुभ रात्रि।